कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदनंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावन चारे। यमुना तीरावन चारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। 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 यमुना तीरावन चारे। यमुना तीरावन चारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा स्कंद 21वां अध्याय, महाराज पृथु द्वारा उपदेश 27। अस्ति यज्ञपतिर्नाम केषाञ्चित् अर्हसत्तमाः यहामुत्र च लक्ष्यन्ते ज्योत्स्नावत्यः क्वचित् भुवः। पाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। माननीय देवियों तथा सज्जनों, शास्त्रों के प्रामाणिक कथनों के अनुसार कोई ऐसा परम अधिकारी होना चाहिए जो हमें अपने अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार पुरस्कृत कर सके, अन्यथा इस जीवन में तथा मृत्यु के बाद कुछ लोग असामान्य सुंदर तथा शक्तिमान क्यों कर हो सकते हैं। तात्पर्य बहुत लंबा है, इसलिए 3 दिन के प्रवचन में यही तात्पर्य चलेगा। तो आज तात्पर्य का पहला भाग हम पढ़ेंगे। पृथु महाराज का अपने राज्य में शासन करने का मूल उद्देश्य अपनी प्रजा को ईश्वर चेतना के पद तक उठाना था। क्योंकि यज्ञशाला में विशाल सभा एकत्र थी, अतः विभिन्न प्रकार के लोग उपस्थित थे, किंतु उनकी अभिरुचि उन लोगों से बातें करने में थी जो नास्तिक न थे। पिछले श्लोकों में बताया जा चुका है कि पृथु महाराज ने नागरिकों को अधोक्षज धियः बनने की सलाह दी थी, और इस श्लोक में वे शास्त्रों का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि उनका पिता कट्टर नास्तिक था, जो वेदों में वर्णित आदेशों का पालन नहीं करता था, और जिसने समस्त यज्ञों को रोक रखा था, जिससे सारे ब्राह्मण नाराज हो गए थे और उन्होंने उसको न केवल सिंहासन चुप्त किया था वरन शाप देकर मार डाला। नास्तिक लोग ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते। वे दैनंदिन जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, उन्हें भौतिक व्यवस्था तथा देव योग के कारण मानते हैं। नास्तिक लोग प्रकृति तथा पुरुष के संयोग के निरीश्वर सांख्य दर्शन में विश्वास करते हैं। वे केवल पदार्थ को मानते हैं और उसकी और उनकी यह धारणा है कि मिश्रण की कतिपय परिस्थितियों में प्राण का उदय होता है, जो पुरुष या भोक्ता रूप में प्रकट होता है। फिर पदार्थ तथा प्राण के संयोग से अनेक प्रकार की सृष्टियां होती हैं। नास्तिक वेदों का आदेश भी नहीं मानते। उनके अनुसार ये वैदिक आदेश मात्र ऐसे सिद्धांत हैं जिनका जीवन में कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पृथु महाराज ने सुझाव रखा कि आस्तिक लोग नास्तिकों के विचार का खंडन इस आधार पर करेंगे कि श्रेष्ठ बुद्धि की व्यवस्था के बिना अनेक प्रकार की सृष्टियां संभव नहीं है। नास्तिक लोग अस्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये विभिन्न सृष्टियां संयोगवश बनती हैं, किंतु आस्तिक लोग वेदों के आदेशों पर विश्वास करने के कारण वेदों के निर्देशानुसार ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है कि सारे की सारी वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों या कि ब्रह्मचारियों, गृहस्थों, वानप्रस्थों तथा सन्यासियों के कर्तव्यों के पालन हेतु बताए गए बनाए गए विधि विधान परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए बने हैं। यद्यपि संप्रति तथा कथित ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों ने मूल संस्कृति खो दी है, तो भी वे जन्म अधिकार से अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र होने का दावा करते हैं, पर वे यह मानने को तैयार नहीं कि ये सामाजिक तथा आध्यात्मिक व्यवस्थाएं भगवान विष्णु की पूजा के लिए हैं। शंकराचार्य ने जो घातक मायावाद सिद्धांत प्रस्तुत किया कि ईश्वर निराकार है, वह वेदों के आदेशों से मेल नहीं खाता, इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी चिंतकों को भगवान के विरुद्ध सबसे बड़ा अपराधी बतलाया है। वैदिक प्रणाली के अनुसार जो वेदों की आज्ञाएं नहीं मानते वह नास्तिक है। जब भगवान बुद्ध ने अहिंसा के सिद्धांत का उपदेश दिया तो उन्हें वेदों के प्रमाण को बाध्य होकर इनकार करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप वेद अनुयायियों ने उन्हें नास्तिक मान लिया। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बौद्ध दर्शन के अनुयायियों को नास्तिक बतलाया क्योंकि वे वेदों के प्रमाण को का निषेध करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य मतानुयायियों को बौद्धों से अधिक घातक मानते थे, क्योंकि वे छल पूर्वक वेदों के प्रमाण को स्थापित करना चाहते थे, किंतु वास्तव में वे बौद्धों के मायावादी दर्शन का अनुसरण करते थे। शंकरवादी दार्शनिकों का यह सिद्धांत है कि हमें ईश्वर का स्वरूप कल्पित करना होता है, ईश्वर की सत्ता के निषेध से कहीं अधिक घातक है। नास्तिकों तथा मायावादियों द्वारा इस प्रकार से दार्शनिक सिद्धांत बनाने के बावजूद श्री कृष्ण भावनामृत के अनुयायी भगवत गीता में दिए गए आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हैं, क्योंकि भगवत गीता को वैदिक शास्त्र का सार माना जाता है। भगवत गीता में कहा गया है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं कृतं स्वकर्मणा तमर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमेश्वर से सब प्राणियों का जन्म हुआ है और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्म से उसे पूछकर सिद्धि प्राप्त करता है। इससे सूचित होता है कि भगवान प्रत्येक वस्तु का मूल स्रोत है, जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, जन्माद्यस्य यतः। स्वयं भगवान ने भी भगवत गीता में पुष्टि की है, अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं प्रत्येक वस्तु का मूल हूँ। भगवान समस्त उद्भवों का मूल स्रोत है और उसी के साथ परमात्मा रूप में वह सारी सृष्टि में फैला हुआ है। अतः परम सत्य तो भगवान है और हर एक जीव अपना कर्तव्य करते हुए भगवान को प्रसन्न रखने के लिए स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य। महाराज पृथु इस सूत्र को जनता के बीच में प्रचारित करना चाहते थे। अनुवाद दोहराइएगा। माननीय देवियों तथा सज्जनों, शास्त्रों के प्रामाणिक कथनों के अनुसार कोई ऐसा परम अधिकारी होना चाहिए जो हमें अपने अपने वर्तमान कार्यों के अनुसार पुरस्कृत कर सके, अन्यथा इस जीवन में तथा मृत्यु के बाद कुछ लोग असामान्य सुंदर तथा शक्तिमान क्यों कर हो सकते हैं, ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणदलिता श्रीविशाखान्वितांश्च वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायके कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषये नमः। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहां पृथु महाराज उपस्थित देवियों और सज्जनों से कह रहे हैं कि शास्त्रों के प्रामाणिक वचनों के अनुसार ऐसा कोई परम अधिकारी व्यक्ति होना चाहिए जो हमें अलग अलग कर्मों का फल प्रदान कर सके। कर्म का नियम या कानून खुद ब खुद नहीं चल सकता, इसका कोई नियंता होना चाहिए। जिस तरह से इस संसार में किसी भी नियम का कोई न कोई नियंता अवश्य होता है, हर एक देश में कानून होता है, कानून को बनाने वाले कोई अधिकारी व्यक्ति होते हैं, कानून को चलाने वाले कोई अधिकारी व्यक्ति होते हैं, और कानून को भंग करने वाले लोगों को दंड देने वाले भी अधिकारी व्यक्ति होते हैं। अधिकारी व्यक्तियों के बिना कोई नियम या कानून नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर हम अपने मुट्ठी में कोई बालू रखें और फिर उसको ऊपर फेंक दें तो बालू के जो कण हैं वो नीचे गिर जाएंगे, बिखर जाएंगे, इतर तितर हो जाएंगे, क्योंकि वो मुट्ठी से बाहर आ चुके हैं। जब तक वो मुट्ठी के भीतर हैं तो कोई न कोई व्यक्ति है जिसने कि उस उन बालू को बालू के कणों को वश में कर लिया है, उनको एक अमुक ढंग से बांध के रखा है, इसलिए वो बिखर नहीं जाते। लेकिन जब वो इस हाथ से निकल जाते हैं तो फिर वो बिखर जाते हैं। तो ये संसार में जो अनेक ग्रह हैं, लोक हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, वो सब अपने अपने पथ में चल रहे हैं, अपने अपने समय के अनुसार वो इधर उधर घूम रहे हैं। कोई भी लेट नहीं आता, भले हम मंगल आरती में लेट आए या नहीं आए, एक दिन नहीं भी आए, हम अपने अपने समय के अनुसार कभी आते हैं जाते हैं। लेकिन जो लोक है, ग्रह है, बिल्कुल अपने अपने समय पर उनका उदय होता है, वो अस्त होते हैं। आपने ऐसे एक भी दिन के बारे में सुना है जबकि सूरज का उदय नहीं हुआ, या सूरज दो मिनट लेट का उदय हुआ, या सूरज दो मिनट देरी से उसका वो अस्त हो गया? नहीं, ठीक बिल्कुल सही ढंग से अपने अपने समय के अनुसार वो चलते हैं। सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड ऐसे चल रहे हैं, तो इनको चलाने वाला तो अवश्य कोई होना चाहिए, कोई बुद्धि होनी चाहिए। तो पृथु महाराज इसी बात को कह रहे हैं। वास्तव में उस सभा में कई नास्तिक भी थे, आस्तिक भी थे, तो पृथु महाराज आस्तिकों की श्रद्धा बढ़ाना चाहते थे और नास्तिकों को समझाना चाहते थे। तो वो कह रहे हैं कि देखो, सुंदर तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं कि जहां कानून होता है वहां अधिकारी होना ही चाहिए, इसलिए नास्तिकवाद जो है ये सही नहीं है। तो इस तरह से पृथु महाराज इस सभा के सामने शास्त्रों का दर्शन पेश करना चाहते थे। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। 16वें अध्याय में जब भगवान श्री कृष्ण दैवी और असुरी गुणों का वर्णन करते हैं, तो ये असुरी गुणों का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि असुरी प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो शास्त्रों को मानते नहीं है। कौन ये शास्त्र किसने लिखे हैं, कौन जानता है? ये केवल किसी ऋषि मुनि ने लिखे होंगे जो कि किसी गुफे में, पहाड़ में, जंगल में बैठे हुए होंगे, किसी ऋषि मुनि की कल्पना के कल्पना से ये सब उत्पन्न हुए हैं। वैसे इन शास्त्रों का क्या महत्व है, इनको पूजने क्यों मानना चाहिए? तो शास्त्रों की बात हम नहीं मानते। तो इस तरह से ऐसे नास्तिक लोगों की धारणा होती है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे असुरी प्रवृत्ति को का खंडन कर रहे हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों के आदेश के अनुसार कार्य नहीं करता है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः। उत्सृज्य मतलब जो मानता नहीं है, उल्लंघन करता है। तो जो व्यक्ति शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करता है, वर्तते कामकारतः, केवल अपने कामनाओं को तृप्त करने के लिए कार्य करता है, उसकी क्या गति होती है? न स सिद्धिम अवाप्नोति, सिद्धि की प्राप्ति कभी भी नहीं कर सकता है वो व्यक्ति। न सुखम, सुख की प्राप्ति भी नहीं कर सकता है। न पराम गतिम, न परागति की प्राप्ति कर सकता है, उसकी दुर्गति ही होगी, सदगति कभी नहीं होगी उसकी। तो शास्त्रों का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति। 4वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण यही बताते हैं, जो अज्ञानी है, अज्ञ च अश्रद्धधान, और जो अश्रद्धालु हैं, उनकी क्या गति होती है? संशयात्मा विनश्यति, उनका विनाश होता है। जो इस तरह से बारंबार संशय करते रहते हैं, शास्त्रों का खंडन करते हैं, उनका विनाश होता है, ये निश्चित है। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्रों में श्रद्धा रखता है, शास्त्रों के नियमों का पालन करता है, उसको परम गति की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से शास्त्रों का महत्व है, क्योंकि शास्त्रों का पालन करने वाला उसको मनुष्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं, उनको मनुष्य नहीं कहते हैं, वो पशु के समान है, इसलिए उनको द्विपद पशु कहते हैं। तो आजकल की सभ्यता पशु सभ्यता है, क्योंकि यहां पर कोई भी शास्त्रों को नहीं मानता है। इसलिए पृथु महाराज कह रहे हैं कि केशांचित अर्ह सत्तमाह यहां मूत्र च लक्ष्यन्ते अस्ति यज्ञपतिर्नाम। तो शास्त्रों के आदेश के अनुसार कोई ऐसे व्यक्ति होना चाहिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरे कल्पना के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, इसलिए ये शब्द प्रमाण कहलाता है, सबसे ऊंचा प्रमाण शास्त्र। वैसे किसी वस्तु को जानने के लिए कई प्रकार के प्रमाण होते हैं, एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, जो हमारी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाकों से सूंघते हैं, लेकिन ये सारे प्रमाण धोखे के कारण है, क्योंकि हम कभी कई बार गलत चीजें देखते हैं, गलत चीजें सुनते हैं, और वैसे भी हमारे आंखों के, कानों की क्षमता क्या है, कितनी शक्ति है, कहां तक हम सुन सकते हैं, कहां तक हम देख सकते हैं, यहाँ भागवत प्रवचन में बैठे हैं, थोड़े आंख यूं हो जाते हैं तो सुनना बंद हो जाता है। तो इतने पास में है, फिर भी कान भी खुले हैं, लेकिन फिर भी सुन नहीं रहे हैं। तो कानों की क्या शक्ति है हमारी? और अगर अचानक सूरज अस्त हो जाए और यहाँ कोई लाइट नहीं रहे, प्रकाश नहीं रहे, तो हम कहाँ तक देख सकते हैं? हमारे आंखों के सामने जो हाथ है उसको भी नहीं देख सकते। तो हमें बहुत घमंड होता है कि हमारी आंखें हैं, काने हैं, कान हैं, और इनसे हम सब कुछ जान सकते हैं। लेकिन हमारी इंद्रियों की शक्ति क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए हमारे इंद्रियों से जो ज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं वो बहुत इसका बहुत कम महत्व रहता है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण धोखे का कारण है। और दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण। हम किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से अपने इंद्रियों को देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते, लेकिन अनुमान लगाते हैं। जैसे हम सूरज को देखते हैं तो सूरज एक गोला लगता है, कितना छोटा गेंद जैसा लगता है। तो अगर हम अपने आंखों के आधार पर हम सूरज के को नाप तोलना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि सूरज तो केवल एक गेंद के बराबर है, फुटबॉल की तरह है। तो सूरज फुटबॉल की तरह एक फुट वो आकार में है बस। लेकिन अनुमान लगाते नहीं, सूरज से इतनी उष्णता आती है तो इसका मतलब है कि सूरज बहुत दूर होना चाहिए, बहुत बहुत दूर होना चाहिए। तो ये अनुमान सही है, तो इसको अनुमान प्रमाण कहते हैं। हम अनुमान लगाते हैं किसी चीज को। प्रत्यक्ष प्रमाण यहां धोखे की बात है, लेकिन अनुमान प्रमाण से हम कुछ सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। लेकिन फिर भी अनुमान प्रमाण भी धोखे का कारण है। हम क्योंकि अनुमान प्रमाण भी हमारी इंद्रियों के ऊपर निर्भर है और हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, हमारे अंदर तरह तरह के त्रुटियां हैं, इसलिए अनुमान प्रमाण भी अपूर्ण है। लेकिन शास्त्रों का जो प्रमाण है वो पूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो अपौरुषेय है, ये भगवान की वाणी है। भगवान ने जो वचन कहे हैं वो कभी झूठे नहीं ठहरा सकते, झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान में वो त्रुटियां नहीं है जो हमारे अंदर है। इसलिए इसे शब्द ब्रह्म कहते हैं। इसलिए शास्त्रों का प्रमाण सबसे उत्कृष्ट प्रमाण है, सबसे ऊंचा प्रमाण है। इसलिए पूर्व कालों में ऐसे अगर किसी दो व्यक्तियों के बीच में कोई वाद होता था और एक व्यक्ति कुछ कहता था जिससे दूसरा व्यक्ति सहमत नहीं था, तो पहला व्यक्ति कहता था या एक उनमें से कहता था, क्या तुम जो कह रहे हो वेद वाक्य है कि मुझे मानना पड़ेगा? मतलब वो कह रहा है कि क्या तुम्हारी बात शास्त्रों वाली बात है कि मुझे यूं ही बस स्वीकार करना होगा? अर्थात वेद वाक्य हमें यूं ही स्वीकार करने चाहिए, और वेद के अलावा जो भी बातें हैं उनको नहीं स्वीकार करनी चाहिए। तो वेद वाक्य को हम अगर यूं ही स्वीकार कर ले तो हमारी दुर्गति कभी भी नहीं होगी। भले हम इसको समझे नहीं, भले हमारी बुद्धि इन चीजों को समझ नहीं पाए, लेकिन अगर शास्त्रों के आधार पर हमने अपना जीवन जिया तो हमारी सदगति निश्चित है। और जो शास्त्रों का आदेश का पालन नहीं करता है उसकी दुर्गति निश्चित है। तो पृथु महाराज ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं यहां पर, जो नास्तिक भी हैं, आस्तिक भी हैं, और सभी से बात कर रहे हैं। कई बार भक्त लोग जब बाहर जाते हैं, चर्चा करते हैं भागवत के ऊपर, तो कई तरह के लोग मिलते हैं श्रोता गणों में। कोई ज्ञानी होते हैं, कोई कर्मी होते हैं, कोई भोगी होते हैं, कोई योगी होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं। जिस तरह से भागवत क्लास में भी अलग अलग तरह के भक्त होते हैं, कोई जागृत होते हैं, कोई स्वयं होते हैं, कोई स्वप्न देख रहे होते हैं, है ना? भागवत क्लास में भी बैठे बैठे अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं। तो उसी तरह से बाहर भी जब भक्त जाते हैं तो अलग अलग तरह के भक्त लोग रहते हैं। सुखदेव गोस्वामी की भी ऐसी ही परिस्थिति थी जब वो श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे थे, अलग अलग तरह के मुनिगण वहां आए, मुनि ऋषि इत्यादि। और केवल बेलगांव से नहीं आए, सारे ब्रह्मांड भर से आए थे। वह महरलोक, जनलोक, तपलोक सब जगह से आए थे, स्वर्गलोक और पृथ्वी के अलग अलग किनारे से भी आए थे। सबको दूरदर्शन से पता चला था, जी टीवी से, कि वास्तव में अभी परीक्षित महाराज कि केवल 7 दिन बच गए हैं और इसलिए सुखदेव गोस्वामी आकर उनको भागवत का प्रवचन देने वाले हैं। 7 दिन की कथा होने वाली है। तो ये जब सूचना सुनी सभी ने, तो सभी लोग, सारे ऋषि मुनिगण एकत्र हुए तुरंत। जिस तरह से जब शहर के लोग सुनते हैं कि अभी कोई नया सिनेमा आया है थिएटर में, तो सभी लोग जगह जगह से वहां पहले शो को देखने के लिए भागते हैं या उस सिनेमा को देखने के लिए किसी न किसी तरह से समय निकालते हैं। ठीक उसी तरह से ये ऋषि मुनिगण वो कथा सुनना चाहते थे, सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत की कथा। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से आ गए। कई लोग पैदल आए तो कई लोग आकाश पथ से आए। जिस तरह से क्रिकेट मैच या सिनेमा देखने के लिए अपने अपने क्षमता पात्रता के अनुसार, बल के अनुसार लोग अलग अलग वाहनों पे आते हैं। कोई लोग इंडिका गाड़ी में आते हैं, तो कई जेन मोटर कार में आते हैं, कई लोग अपने मोटरसाइकिल में जाते हैं, तो कई लोग अपने 11 नंबर के बस में जाते हैं, पैदल ही चले जाते हैं। तो उसी तरह से अलग अलग अपने अपने पात्रता के अनुसार अलग अलग ऋषि मुनिगण अलग अलग ढंग से आए। कोई ऋषि मुनिगण जो है पैदल आए, बहुत दूर से चलते चलते आए। जो योगी थे वो उड़ के आए, क्योंकि उनके अंदर वो सिद्धियां थी। कोई पानी के नीचे, नदी में से नीचे तैर के आए, योग्य लोग ऐसा कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बताया करते थे कि हरिद्वार से प्रयाग रोज एक योगी आया करते थे। सुबह को आते थे, वहां प्रयाग में स्नान करते थे, फिर से चले जाते थे पानी के नीचे नीचे से ही। तो योगी, कई लोग योगी ऐसे आए होंगे सुखदेव गोस्वामी का प्रवचन सुनने के लिए, क्योंकि ये भी गंगा जी के तट पर ही हुआ था। और कोई जो बाहरी लोगों से आए, ऊपर लोगों से आए, वो तो केवल आकाश पथ से उड़कर आए, उनको कोई वाहन की भी आवश्यकता नहीं थी, अपने योग सिद्धि से, योग बल से वो उड़ सकते थे, तो वो आए। इस तरह से सभी लोग वहां उपस्थित हुए। ऐसा नहीं है कि केवल वहां पर भक्त थे, ज्ञानी थे, योगी थे, तपस्वी थे, वैरागी थे, वेदों को पालन करने वाले थे, कर्मी थे, भक्त भी थे, सब तरह के लोग वहां थे। तो सुखदेव गोस्वामी तो महाभागवत हैं, भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं। परीक्षित महाराज भी विष्णु रात कहलाते हैं, क्योंकि उनकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने साक्षात की थी जब वो अपने मां के गर्भ में थे। तो दोनों भक्त हैं। जब दो भक्त एकत्र होते हैं तो भक्ति की बात ही तो करेंगे, खास करके जब परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्तों का मिलन हो, तो भक्ति के सिवाय और क्या बात करेंगे वो। हाँ, हमारे भक्त जब कभी कभी मिलते हैं तो इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी और महाराज परीक्षित जैसे भक्त जब एकत्र हुए, तो भक्ति के अलावा भला और क्या बात कर सकते थे वो। कई बार लोग ये लोगों की धारणा होती है कि भगवत गीता ये ज्ञान का विषय, मतलब ज्ञान योग ये सार है, ये ज्ञानियों के लिए है, ज्ञान श्रेष्ठ है और भगवत गीता का संदेश ज्ञान है कि हमें ज्ञान योग का पालन करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, यही सब कुछ है, भगवत गीता में यही हमें बताया गया है कि हमें अपने कर्म करने चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि 6ठा अध्याय भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए महाराष्ट्र के एक संत ने इसी अध्याय के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है जिसमें योगाभ्यास है, ध्यान योग जिसका शीर्षक है, इसलिए यही अध्याय जो है सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए योग पद्धति ही सर्वश्रेष्ठ है। इस तरह से हर एक आदमी अपने अपने मनगढ़ंत ढंग से कोई न कोई निष्कर्ष निकालता है भगवत गीता का और कहता है कि गीता का सार ये है वो है। और जो ऐसे लोग हैं जो कि न योगी है न ज्ञानी है, न कर्मी है, वो अपने धारणा निकालते हैं। गीता का सार आपने पढ़ा होगा, गीता सार, जो हुआ उसके लिए शोक मत कर, जो होना है उसके लिए चिंता मत कर, तू कौन है, तू किसका है, कौन तेरा है ना, तेरा क्या था जो तू खो सकता है, तेरा क्या होगा जिसके लिए तू इतना प्रयास कर रहा है, इस संसार में क्या तेरा है और क्या उसका है, ये सब कह रहे हैं, सो ठीक कह रहे हैं, गलत नहीं है ये, सचमुच हम किसके हैं और कौन हमारा है। और ये भी सत्य है कि हमारा कुछ भी है नहीं, तो हमारा कुछ है नहीं तो हम क्या खो सकते हैं, ये सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन ये तो सत्य, ये भगवत गीता का सार नहीं है। सार क्या है भगवत गीता का? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माशुच मन्मना भव मद भक्तो मद्याजि माम नमस्कुरु मामेवैषसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। भक्ति और शरणागति ही भगवत गीता का सार है। तो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि गीता का सार ये है, गीता का सार वो है, लेकिन अंततः गीता का सार भक्ति है। जब भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त अर्जुन एकत्र होते हैं तो भला गीता के अलावा और क्या बात कर सकते हैं वो? जिस तरह से जब दो भक्त एकत्र होते हैं तो भक्ति के अलावा कुछ नहीं बात कर सकते। तो जहां अर्जुन है और जहां कृष्ण है, भक्ति के अलावा भला कोई विषय हो सकता है वहां? नहीं हो सकता। इसलिए ये तो बहुत साफ साफ जाहिर होता है कि भगवद गीता का सार भक्ति ही होना चाहिए। तो ठीक उसी तरह से जहां दो महाभागवत जैसे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज एकत्र हुए हैं तो भला भक्ति के अलावा कोई और विषय हो सकता है? लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि सारे ऋषि मुनिगण जो एकत्र हुए थे उनमें से सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं थे, हालांकि वो जिज्ञासु थे, वहां भक्त भी थे लेकिन कर्मी भी थे और जिज्ञासु भी थे। सब आए हुए थे जानने के लिए कि क्या हम सुने तो सही, क्या चल रहा है ये भागवत कथा में, क्या होगा जाने तो सही। तो सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि मैं ऊंचे से ऊंचे कृष्ण भक्ति की बातें करूंगा तो शायद इनको इतना अच्छा नहीं लगेगा, ये लोग समझ नहीं पाएंगे, इसमें रुचि नहीं आएगी इनको, इसलिए किस तरह से हमें ऐसे भागवत की कथा करनी चाहिए जिससे कि इनके मन में जो विचार हैं या इनकी जो धारणाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, उनको साथ में मिलाकर उनको भक्ति तक पहुंचाना है। किस तरह से ये योगी, वैरागी, ज्ञानी, कर्मी इत्यादि, इन सबको एक साथ मिलाकर धीरे धीरे से इनकी चेतना को उठाना है और भक्ति तक पहुंचाना है। सीधे ही अगर मैं रासलीला के बारे में बात करने को देखूं तो ये लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए धीरे 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 से इनकी चेतना को उठाना है। इसलिए थोड़ा बहुत उन्होंने योग की बात की योगियों को आकर्षित करने के लिए, थोड़ा बहुत ज्ञान की बात की ज्ञानियों को आकर्षित करने के लिए, थोड़ा बहुत कर्मकांड की बात की कर्मकांडियों को आकर्षित करने के लिए, थोड़ा बहुत वैराग्य की बात की वैराग्यों को आकर्षित करने के लिए। तो इस तरह से इन अलग अलग विषयों के ऊपर उन्होंने बात किया और सबको बांध कर आखिर में कहां तक ले आए? भक्ति तक ले आए। तो इस तरह से ज्ञान की लकड़ी, कर्मकांड की लकड़ी, योग की लकड़ी, वैराग्य की लकड़ी, कई तरह से छड़ी लकड़ी पड़े थे। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया? भक्ति के रस्सी से लेकर इन सबको बांध दिया, एक कर दिया, और एक करके फिर रस्सी से ही उन सारे ऋषि मुनिगण को एकत्र बांध दिया, उनको भक्ति में सम्मिलित करा दिया, तल्लीन करा दिया उनको सबको। तो सुखदेव गोस्वामी इतने निपुण वक्ता थे, इतने निपुण भक्त थे कि उन्होंने इन सारे ऋषि मुनि वैरागी बाबा सबको भक्ति के पथ पर वो सब ले आए। तो इसलिए उनको इन सारे विषयों के बारे में बात करना पड़ता था। कभी कभी लोग पूछते हैं कि अगर भागवत ये भक्ति का ग्रंथ है तो इसमें कभी कभी कर्मकांड इत्यादि की बातें क्यों की जाती हैं? जैसे गजेंद्र मोक्ष के बारे में बताया जाता है कि अगर आप गजेंद्र लीला पढ़ेंगे हर रोज पढ़ेंगे तो आपको बुरे सपने नहीं आएंगे। वैसे भक्त को सपने से क्या लेना देना है, उसको तो भक्ति चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसे कई तरह के चीजें भागवत में पढ़ने को मिलते हैं। जो व्यक्ति इस अध्याय को हर रोज सुबह शाम पढ़ता है, जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। भक्त को मुक्ति से भी कुछ लेना देना नहीं। तो ये सब क्यों बताते हैं सुखदेव गोस्वामी? क्योंकि उस समय के श्रोतागण तो ऐसे योगी इत्यादि तो थे ही, लेकिन वो जानते थे कि आगे चल के भी जो श्रोतागण होने वाले हैं भागवत के लिए, उनके बीच में भी ऐसे लोग होने वाले हैं। कई लोगों के भौतिक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, कई लोगों की मुक्ति की अभिलाषा है, ऐसे अलग अलग कई प्रकार के लोग होने वाले हैं। इसलिए सबको थोड़ा थोड़ा खुश करने के लिए उन्होंने थोड़ा कुछ इधर उधर दिया है, उनको प्रलोभन देने के लिए, ताकि वो कथा छोड़कर चले न जाएं, भागवत कथा पढ़ते पढ़ते छोड़ न दें। थोड़ा कुछ उनको एक आकर्षण प्रलोभन थोड़ा बहुत दे दिया और फिर उनको बांध के रखा। और जब बांध के रखा तो फिर कृष्ण कथा आरंभ की धीरे धीरे धीरे, और इस तरह से उनके हृदय को पूरी तरह शुद्ध किया और पहले स्कंद से बढ़ते बढ़ते दशम स्कंद तक पहुंचे और फिर धीरे धीरे से ऊंचे कृष्ण मधुर मधुर कृष्ण लीला का वर्णन करने लगे। देखिए ये है सुखदेव गोस्वामी की निपुणता। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी को के देखना पड़ा था कि कैसे सारे लोगों को एक रख के, उनको जगे हुए रखकर कथा देना है, करना है। जिस तरह से जो गीता भागवत के ऊपर हमारे भक्त लोग भी कथा करते हैं तो उनको कई बार कहानियां बोलती रहने पड़ती है। क्यों? क्योंकि दर्शन से लोगों को नींद आती है, तो उनको जागृत अवस्था में रखने के लिए चुटकुले सुनाने पड़ते हैं और ना कहानियां सुनानी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि मन में अभी तक रुचि नहीं आई कृष्ण कथा सुनने के लिए। जिस तरह से कभी कभी बालक को खिलाने के लिए कुछ न कुछ कहानी सुनानी पड़ती है, नहीं तो वो खाएगा नहीं भोजन। और जब जब सुन रहा है आ करके अच्छी कहानी, कोई अच्छा पॉइंट आ जाता है कहानी में, बच्चा आ करके सुन लेता है तो मुंह में प्रसाद डाल लेते हैं। तो इसी तरह से ये कलयुग में जो मन है वो बालक जैसा है, बच्चे जैसा है। तो कहानियां थोड़ी सुनाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, थोड़ा हंसा देते हैं श्रोतागण को, और जब जागे हुए होते हैं पट करके कुछ कृष्ण कथा दे देते हैं, फिर से सो जाते हैं, फिर उनको जागृत कराते हैं कुछ चुटकुला सुनाकर, जग जाते हैं तो पट करके कुछ और दे देते हैं। इस तरह से कलयुग में जो भागवत के वक्ता होते हैं उनके लिए बहुत कठिन है, क्योंकि ये आजकल कलयुग का वातावरण इतना बुरा है, सभी लोगों को नींद बहुत जल्दी आती है। वैसे नींद नहीं आती, इधर उधर घूमने फिरने में नींद नहीं आती, लेकिन न जाने क्यों जाप के लिए बैठ जाते हैं, भागवत सुनने बैठ जाते हैं तो तुरंत पट करके नींद आ जाती है। इसलिए यहां पर जाप करना आंख खुले कर कर ही करना चाहिए। आंखें बंद करके करेंगे तो जाप भी भूल जाएंगे, केवल निद्रा की अवस्था में चले जाएंगे। इसलिए आंखें खोल के ही हमें जाप करना चाहिए, इस तरह से नींद नहीं आएगी और फिर हम हरि कथा का श्रवण, हरि नाम का श्रवण कर पाएंगे। तो जो परिस्थिति सुखदेव गोस्वामी की थी, ठीक उसी तरह की परिस्थिति महाराज पृथु की थी, क्योंकि वो देख रहे थे कि जो देवी और सज्जन वहां उस सभा में, भरी सभा में थे, वो अलग अलग तरह के थे, आस्तिक थे, नास्तिक थे, कर्मी थे, योगी थे। तो पृथु महाराज ने बहुत बुद्धि अपनी इस्तेमाल करके ऐसे वो बात कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि सबका मन भाए, सब लोग उसको समझ पाए और फिर धीरे धीरे उनको कथा में रुचि आए। इस तरह से महाराज पृथु अभी उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें शास्त्रों की बातों को मानना चाहिए और शास्त्रों के आधार से ये प्रमाण है कि इस सृष्टि को बनाने वाला, कर्म के कानून को, के फल को प्रदान करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। और आगे चल के पृथु महाराज क्या बताने वाले हैं वो आगे आगे पढ़ते जाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न, टीका, टिप्पणी इत्यादि? कि आजकल ये नियम बन गया है, सर्वसाधारण यही होता है, लेकिन सतयुग में हिरण्यकश्यप जैसे असुर हुआ करते थे, बहुत अच्छा अत्याचार करते थे, लेकिन संख्या उनकी कम हुआ करती थी, लेकिन बल बहुत ज्यादा था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, संख्या बहुत ज्यादा है लेकिन बल कम है, छोटे मोटे हिरण्यकश्यप भरे हुए हैं सब सब जगह। तो यही अंतर है, धर्म या अधर्म की वृद्धि होती है। जैसे जैसे युग बीतते जाते हैं धर्म का घटन होता है और अधर्म की वृद्धि होती है, और इसलिए फिर भगवान को आना पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य ज्ञाने भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम।